का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी विश्वासघात। उस दिन प्रतिमा बहुत खुश थी। अभी एक साल भी नहीं हुआ था उसे इस नई जगह पर आए, और एक साल के अंदर अंदर ना सिर्फ उन्होंने अपनी किताबों की दुकान अच्छी खासी चला ली थी, बल्कि अपनी खुद की दुकान भी खरीद ली थी। प्रतिमा मन ही मन काफी निश्चिंत थी कि अब कम से कम दुकान के मालिक की हर महीने की चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। भगवान से वह ये भी प्रार्थना कर रही थी कि अगर उनका खुद का घर भी जल्दी बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। नई दुकान खरीदने की खुशी में उन्होंने दुकान पर ही छोटा सा हवन और चाय पानी का प्रोग्राम रखा था। उसमें उनके वहां रहने वाले कुछ रिश्तेदार और उसके सास ससुर ही थे। दुकान खरीदने के लिए उन्होंने अपनी हिस्से की गांव की जमीन बेच दी थी। प्रतिमा हवन के बाद सबको चाय आदि पूछ रही थी कि उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने अंजलि को आते देखा। उसने तो वहां की अपनी किसी भी सहेली को नहीं बुलाया था। उसने सोचा था कि जब वह अपना घर खरीदेगी तभी सबको बुलाएगी। मन ही मन वह काफी दुविधा में थी अंजलि को देखकर। अंजलि का बेटा आदित्य और उसका बेटा शिवम एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जब प्रतिमा अपने बेटे शिवम को आदित्य के जन्मदिन पर उसके घर छोड़ने गई, तब वह अंजलि से पहली बार मिली थी। पहली मुलाकात में ही उसे अंजलि एक पढ़ी लिखी और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला लगी थी। अंजलि के पति का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब उसे उसके पति के बैंक में ही नौकरी मिल गई थी। अंजलि के पति नहीं थे, बावजूद वह खुद को काफी सजा संवार कर रखती थी। वह अपने बेटे और सास के साथ रहती थी। धीरे धीरे उनका एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ता गया। प्रतिमा को अंजलि के पति ना होने की वजह से उससे हमदर्दी हो गई थी। प्रतिमा को भी बेटे के साथ साथ अंजलि के रूप में नई जगह पर अच्छी सहेली मिल गई थी। अंजलि अपनी नौकरी के कारण इतना व्यस्त रहती थी कि आदित्य काफी समय प्रतिमा के यहां ही बिताता था। कभी कभी देर होने की वजह से उसके पति को आदित्य को घर छोड़ने जाना पड़ता। जब पहली बार राखी का त्योहार आया तो आदित्य जिद करके अपनी मम्मी के साथ प्रतिमा की बेटी चंदा से राखी बंधवाने आ गया। आदित्य और चंदा में काफी पटती थी। आदित्य भी चंदा को सगी बहन की तरह ही प्यार करता था। इस तरह दोनों परिवार थोड़े समय में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। कई बार प्रतिमा उसके पति और बच्चे घूमने जाते तो अंजलि और उसके बेटे को भी साथ ले लेते। कुछ दिनों बाद प्रतिमा की मेहनत और प्रयासों से उन्हें बच्चों के डीएवी स्कूल की किताबों का काम भी मिल गया था। वह आशुतोष की उसके काम में पूरी मेहनत से मदद करती थी। यदि आशुतोष स्कूल वाली दुकान संभालते तो वह अपनी पुरानी दुकान का काम देखती। प्रतिमा काफी मेहनती थी। वह दुकान के साथ साथ घर और बच्चों की जिम्मेवारी भी बखूबी संभाल लेती थी। प्रतिमा एक अच्छे घर परिवार की थी और काफी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अपने पति और बच्चों की तरफ पूरी तरह से समर्पित थी। अंजलि को आया देखकर उसे औपचारिकतावश उसका अभिवादन करना पड़ा, पर मन ही मन उसके हलचल चलती रही कि अंजलि बिन बुलाए आखिर वहां कैसे पहुंच गई। उस समय तो वह सबके सामने सहज होने का अभिनय करती रही, पर ध्यान उसका इसी बात पर अटका रहा। रात को जब सब काम निपटाकर वह खाली हुई तो उसने आशुतोष को पूछ ही लिया कि अंजलि को किसने बुलाया था। आशुतोष कहने लगे, हाँ प्रतिमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, उस दिन जब रात को काफी देर हो गई थी और आदित्य को मैं छोड़ने गया था तो अंजलि के बार बार कहने पर मैं कुछ देर उनके घर बैठ गया था। तब इधर उधर की बातों में जब दुकान की बात निकली तो मैंने ही औपचारिकतावश उसको आने के लिए कह दिया था। प्रतिमा आशुतोष की बात पर कोई प्रतिक्रिया ना कर सकी, पर मन ही मन बेचैन सी हो गई कि आखिर अंजलि उसकी सहेली है, तो जब तक प्रतिमा ने उसे आने के लिए नहीं कहा था तो उसे इस तरह से आना शोभा नहीं देता था। उसकी बाकी सहेलियों को, खासकर मीनाक्षी को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। कुछ दिनों से वह अंजलि और आशुतोष के व्यवहार में काफी बदलाव महसूस कर रही थी। जब कभी भी आदित्य को छोड़ने या अंजलि के घर का कोई भी काम होता तो आशुतोष काफी उत्सुक हो जाते। अंजलि भी अब पहले की तरह प्रतिमा को फोन नहीं करती थी। अब कोई काम होता तो वह सीधे आशुतोष को ही फोन करके कह देती। एक दिन जब आदित्य को उसके घर छोड़ने जाना था तो उसकी बेटी चंदा जिद करने लगी,
पापा आज हम सब चलते हैं और हमें आइसक्रीम खिला कर लाओ, मम्मी भी चलेगी, प्लीज पापा आज बहुत मन है आइसक्रीम खाने का।
उसकी जिद के कारण प्रतिमा और सब साथ में आइसक्रीम खाकर आदित्य को घर तक छोड़ने चले गए। आदित्य अपने घर पहुंचकर कहने लगा,
आंटी आप तो कई दिन बाद हमारे घर आई हो, अंदर चलिए ना और मम्मी से भी मिल लीजिए।
अंदर चलकर वे लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद अंजलि अपने कमरे से बाहर आई तो उसने बहुत ही महीन सी नाइटी पहनी थी, जिसमें ना सिर्फ उसका गोरा बदन, यहां तक कि उसके उरोज भी साफ दिखाई दे रहे थे। प्रतिमा यह देखकर शर्म से पानी पानी हो गई कि अंजलि को आशुतोष की तो कम से कम कोई शर्म करनी चाहिए थी। प्रतिमा का अंजलि की बेशर्मी देखकर वहां दम घुटने लगा और वह झट से खड़ी हो गई। प्रतिमा उस दिन से काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन आशुतोष स्कूल वाली दुकान पर जाते समय प्रतिमा को पुरानी दुकान पर छोड़ गए। कुछ देर बाद प्रतिमा को अपनी तबीयत खराब सी लगने लगी। उस दिन दुकान पर कोई खास काम भी नहीं था। उनकी दुकान के नजदीक ही उसका घर था। कुछ देर तो उसने कोशिश की बैठने की, पर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने सोचा कि कुछ देर के लिए घर चली जाती हूं और थोड़ी देर दवाई लेकर आराम कर बाद में आ जाऊंगी। वह नौकर को दुकान पर बिठाकर घर चली गई।
अक्सर उनके घर की चाबी वहीं गमले के नीचे पड़ी रहती थी। उस दिन घर पर भी कोई नहीं था क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसने देखा तो उसे चाबी वहां मिली नहीं। कुछ देर तो वह ढूंढने की कोशिश करती रही, फिर उसने देखा तो पाया कि घर तो अंदर से ही बंद है। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो जो दृश्य उसे सामने नजर आया उससे उसके पैरों तले की जमीन ही सरक गई। वह अंजलि और आशुतोष को वहां देखकर बिना कुछ बोले उल्टे पांव वापस दुकान पर चली गई। उस दिन के बाद वह बहुत गुमसुम रहने लगी। उसे यह सोचकर गहरा आघात पहुंचा कि जिस सहेली को बेसहारा समझकर उसने सहारा देने की कोशिश की, उसने उसी के साथ विश्वासघात किया। और उसके पति आशुतोष, जिनके हर सुख दुख में वह एक परछाई की तरह साथ निभाती रही, उस इंसान ने सही गलत का फर्क खत्म कर दिया। उसे मन ही मन आशुतोष से नफरत हो गई कि मर्द की तो जात ही ऐसी होती है। अगर उसकी आंखों के सामने ये सब चल रहा था तो चोरी छिपे तो पता नहीं किन किन औरतों के साथ हम बिस्तर हुए होंगे अभी तक। प्रतिमा बहुत दुखी रहने लगी। सारा दिन घर में पड़े रहना, ना किसी से बात करना, ना कहीं जाना, बस मन ही मन घुटते रहना। वह अंदर से बुरी तरह टूट कर बिखर गई थी। कोई फोन भी आता था तो बात ना करती। आशुतोष की मासी का वहीं पास में ही घर था। उन्होंने जब वह इस अनजान जगह पर आए थे तो उनकी काम के लिए दुकान ढूंढने और घर की तलाश में काफी मदद की थी। उस मासी का बेटा विक्रम और प्रतिमा कभी कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन वह अचानक उनके घर चला आया और शिकायत करते हुए कहने लगा, क्या बात है भाभी, आजकल फोन का जवाब भी नहीं देती, मैं कब से आपको फोन कर रहा था, आपने फोन नहीं उठाया तो मुझे चिंता होने लगी, तो सोचा कि चलकर देखूं तो कि माजरा क्या है। दरवाजा भी आपने कितनी देर के बाद खोला है, मम्मी भी आपको कई दिनों से याद कर रही थी। प्रतिमा अपनी उदासी छुपाती हुई सहज होने का अभिनय करते हुए, नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाई। विक्रम उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए बोला, क्यों झूठ बोल रही हो, कोई बात तो जरूर है, आशुतोष के साथ कोई बात हुई है क्या, मैं तुम्हें कॉलेज के जमाने से जानता हूं। प्रतिमा और विक्रम कॉलेज से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। शुरू से ही वह विक्रम को एक अच्छा दोस्त मानती थी, परंतु जब आशुतोष से उसका विवाह हो गया तो रिश्ते की मर्यादा के तहत वह विक्रम से दूरी बनाए रखती थी। विक्रम भी अब उसे उसका नाम लेकर बुलाने की बजाय भाभी कहकर बुलाता था। उस दिन इतने दुविधा भरे हालात में विक्रम को सामने देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और भावुक होकर उसने अंजलि और आशुतोष वाला सारा किस्सा बयां कर दिया। प्रतिमा बात करते करते अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, जो आंसू कब से उमड़ने के लिए बेचैन थे। विक्रम को प्रतिमा की ऐसी हालत पर तरस आने लगा और आशुतोष पर उसे बहुत गुस्सा आया। कितनी अच्छी पढ़ी लिखी और सुशील पत्नी को छोड़कर ये सब बातें क्या उसे शोभा देती हैं? विक्रम को शुरू से ही प्रतिमा से लगाव रहा था, पर उसके विवाह के बाद उसने अपने आप को सीमित कर लिया था और कभी भी कोई फालतू बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। विक्रम प्रतिमा की कहानी सुनकर एक बार तो जड़वत हो गया। उसे कुछ देर समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर वह काफी देर प्रतिमा के पास बैठा उसे सांत्वना देता रहा। उसे प्रतिमा की हालत काफी चिंताजनक लगी कि कहीं मानसिक परेशानी के चलते वह कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। विक्रम की बातों से प्रतिमा थोड़ा संभल गई। प्रतिमा ने विक्रम को इस बारे में किसी से भी बात करने के लिए मना कर दिया, यह सोचकर कि कहीं बात ज्यादा बिगड़ ना जाए। उस दिन के बाद विक्रम को प्रतिमा की काफी चिंता रहने लगी। वह दिन में कई बार फोन करके उसका हालचाल पूछता और समय मिलता तो उसे मिलने चला आता। विक्रम की आत्मीयता से प्रतिमा को काफी हौसला मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब ये बातें आशुतोष के कानों तक पहुंची कि विक्रम कई बार प्रतिमा से मिलने आ चुका है, तो वह बहुत आग बबूला हुआ। पहले तो फोन करके उसने विक्रम को बहुत बुरा भला कहा और फिर बहुत तैश में आकर घर पर आकर प्रतिमा को बुरा भला कहने लगा। क्या बात है प्रतिमा, आजकल विक्रम बहुत आने जाने लगा है, पुराना प्यार तो कहीं जाग नहीं रहा, मेरी खूब बुराइयां कर रही होंगी उसके सामने और वह भी पूरी हमदर्दी जता रहा होगा, पुराना दोस्त जो ठहरा। एक बात को पकड़कर बैठे रहना है तो बैठी रहो, रोती रहो सारा दिन घर में बैठकर, लोगों को जतला रही होगी कि तुम कितनी दुखी हो मेरे साथ, और कर लो जितना बदनाम करना है मुझे, जिस जिस को भी बताना है मेरे बारे में बता दो, तुम्हें शांति मिल जाएगी ना ये सब करके। प्रतिमा के सब्र का बांध टूटने लगा तो आशुतोष की शूल के समान चुभने वाली बातें सुनकर आखिर प्रतिमा को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आशुतोष, तुम मर्द लोग भी बहुत अजीब होते हो। जब तुम लोग बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ हमदर्दी करते हो और गुलछर्रे उड़ाते हो तो तुम्हें कुछ भी करने की छूट है, क्योंकि तुम मर्द हो। इसलिए हमारा पुरुष प्रधान समाज भी बहुत अजीब कायदे कानून बनाता है, दोहरापन फैला हुआ है हमारे समाज में। जब किसी अपने ने आकर तुम्हारी पत्नी से हमदर्दी से दो बोल बोले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यदि विक्रम समय पर आकर मुझे ना संभालता तो पता नहीं तनाव में मैं क्या कर बैठती। हाँ हाँ, सबको चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि मैं तुम्हें कितना दुखी रखता हूं। कहते कहते आशुतोष का हाथ प्रतिमा पर उठते उठते रह गया। प्रतिमा आशुतोष की ऐसी हरकत पर एकदम से स्तब्ध रह गई और आखिर इतने दिनों से जो गुबार प्रतिमा के अंदर भरा पड़ा था वह लावा बनकर बाहर आ गया। आशुतोष, तुम जैसे लोगों के लिए भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती, तुम्हारे लिए तो प्यार सिर्फ जिस्म पाने का ही नाम होता है।
यदि सही मायने में अंजलि से हमदर्दी है तो हिम्मत है तो जाओ उसके साथ रहकर दिखाओ।
अरे तुम में कहां इतनी हिम्मत है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि प्यार जिस्म से नहीं आत्मा से होता है, और जब किसी रिश्ते में प्यार ही ना हो तो उसे मेरे हिसाब से घसीटने से कोई लाभ नहीं। इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं।
अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी विश्वासघात। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।